तीर्थं मुहुसं स्पृशतां हि मानसं हरत्यजन्तः श्रुतिभिर्गतं गजम् को वै न सेवेत् मुकुन्द विक्रमम् यत्सङ्गलब्धं निजवीर्यवैभवम् तीर्थं मुहुसं स्पृशतां हि मानसम्। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा ऐसे व्यक्तियों की संगति करने से जिनके लिए श्री भगवान मुकुंद ही सब कुछ हैं, भगवान के यशस्वी कार्यों को सुनकर समझा जा सकता है। मुकुंद के यशस्वी कार्यों को सुनकर ही भगवान की संगति प्राप्त की जा सकती है। निरंतर उत्सुकता पूर्वक भगवान के यशस्वी कार्यों का वर्णन सुनते रहने से परम सत्य श्री भगवान ध्वनि तरंगों के रूप में हृदय में प्रवेश करते हैं और समस्त मल को दूर कर देते हैं। दूसरी ओर यद्यपि गंगा स्नान से मल तथा संदूषण घटते हैं, किंतु स्नान तथा पवित्र स्थानों के दर्शन से दीर्घ काल के अनंतर ही हृदय स्वच्छ हो पाता है। अतः ऐसा कौन विज्ञ पुरुष होगा जो जीवन की पूर्णता के लिए भक्तों की संगति नहीं करना चाहेगा। तात्पर्य, निसंदेह गंगा स्नान से कई संक्रामक रोग दूर हो जाते हैं, किंतु इससे भौतिकता से आसक्त मनुष्य का मन स्वच्छ नहीं हो सकता, जिसके कारण भौतिक जीवन में सभी प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। किंतु जो कोई भगवान के कार्यों का श्रवण करके उनसे प्रत्यक्ष संगति करता है, वह मन की मलिनता को धोकर शीघ्र ही श्री कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत में सुत गोस्वामी ने इसकी पुष्टि की है। श्रृण्वतां स्वकथ कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तहि भद्राणि विधुनोति सुहत्सताम्। जब कोई भगवान के कार्यों का वर्णन सुनता है तो प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले श्री भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे स्वयं श्रोता के मनोमल को स्वच्छ कर देते हैं। हृदयंतस्थ भद्राणि विदुनोति, वे मन के समस्त मल को धो डालते हैं। अपने मन को धो डालने पर मनुष्य श्री कृष्ण भावनामृत की अपनी मूल स्थिति में पहुंच जाता है और इस प्रकार उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग के सभी महान संतजन श्रवण विधि की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र के सामूहिक कीर्तन का शुभारंभ किया, जिससे प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण के पवित्र नाम का श्रवण कर सके। क्योंकि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के श्रवण मात्र से वह पवित्र हो जाता है, चेतो दर्पण मार्जनम। इसलिए हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे संसार में हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है। जब हरे कृष्ण के कीर्तन से मन शुद्ध हो जाता है तो मनुष्य क्रमशः कृष्ण भावनामृत स्थिति को प्राप्त होता है और वह श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत तथा भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथों को पढ़ता है। इस प्रकार भौतिक दूषण से अधिकाधिक पवित्र हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। निरंतर श्रीमद् भागवत का श्रवण करने तथा निष्काम भक्त की सेवा से मन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और यशस्वी भगवान के प्रति सेवा भाव स्थापित हो जाता है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों द्वारा की जाती है। इस प्रकार भगवान के यशस्वी चरित्र के श्रवण मात्र से भक्त का हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है और उसे चिरंतन दास के रूप में, जो भगवान का विभिन्न अंश होता है, अपनी मूल स्थिति प्रकट हो जाती है। भक्त द्वारा भक्ति में संलग्न होने पर रजो तथा तमोगुण क्रमशः पराभूत हो जाते हैं और वह सतोगुण में ही सारे कार्य करता है। उस समय उसे प्रसन्नता होती है और वह कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होता है। सभी बड़े बड़े आचार्यों का भी मत है कि मनुष्यों को श्री भगवान के संबंध में सुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, तभी सफलता निश्चित है। जितना ही अधिक हम अपने हृदयों के मल को स्वच्छ करेंगे, उतना ही अधिक श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, वैशिष्ट्य और कार्यों के प्रति आकृष्ट होंगे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सार है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सार को समझा रहे हैं। ये इतना बड़ा आंदोलन, आंदोलन का अर्थ होता है सभी लोगों को साथ में लेकर चलना, काफी लोगों को लेकर एक साथ एक उद्देश्य के लिए आगे बढ़ने को आंदोलन कहते हैं। जैसे हमारे देश में हम लोग देखते हैं लोग कई तरह के कई प्रकार के आंदोलन चलाते हैं, कोई गरीबों के लिए आंदोलन चलाते हैं, कोई भूमि के लिए आंदोलन चलाते हैं, कोई अपने गांव को बचाने के लिए आंदोलन चलाते हैं, कोई महिलाओं के लिए आंदोलन चलाते हैं, ऐसे बहुत सारे आंदोलन। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का अर्थ है सभी भक्तों को जो कृष्ण भावना भावित हैं या जो होना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एक उद्देश्य देना जो है कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, और उस उद्देश्य को मन में रखते हुए सारे लोगों को एक साथ लेकर एक ही मार्ग पर चलना, अर्थात ऐसा मार्ग जो हमें कृष्ण की ओर ले जाए, जिसे भक्ति कहते हैं। तो कई लोगों को साथ में लाकर भक्ति करने का उद्देश्य है ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना। श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि इसका सार है कृष्ण कथा का श्रवण। हम लोग जब भी इस आंदोलन में आए, चाहे आज आए हों या पहले आए हों, तब से हम लोग श्रवण कर रहे हैं, और आंदोलन में आने के पहले भी हम लोगों ने इस विषय में श्रवण किया, सुना, और तब हम लोग आकर्षित हुए इस आंदोलन के प्रति और हम लोग यहाँ पर आए। तो सुनना या श्रवण करना ये भक्ति की बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस कलयुग में श्रवण और कीर्तन, यही दोनों चीज़ों से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। नौ विधियाँ प्रहलाद महाराज ने दी है भक्ति की, लेकिन बाकी विधियां करना संभव नहीं है इस कलयुग में मनुष्यों के लिए। हम लोग भगवान का स्मरण सतत नहीं कर सकते, हम लोग सतत भगवान की पाद सेवन नहीं कर सकते, अर्चना वंदनम नहीं कर सकते, दास नहीं बन सकते, साख्य नहीं बन सकते, पूर्ण रूप से समर्पण नहीं कर सकते। इसलिए कम से कम श्रवण कीर्तन ये हम लोगों को करना चाहिए, ताकि भगवान के बारे में बार बार श्रवण करके हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। यहाँ पर इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान के यशस्वी कार्यों को केवल सुनकर ही समझा जा सकता है, और उनको सुनकर ही भगवान की संगति प्राप्त हो सकती है। कई बार जब बाहर के लोगों को, अभक्तों को बताया जाता है कि आपको भक्तों के विषय में, भगवान के विषय में सुनना है, तो कहते हैं भगवान है कहाँ, पहले हमें भगवान दिखाइए तब हम उनके बारे में सुनेंगे। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि केवल भगवान के बारे में सुनने से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। जब तक सुनेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे कि भगवान कौन है और भगवान कहाँ मिल सकते हैं। तो ऐसे कार्य भगवान यहाँ पर करते हैं, इस पृथ्वी पर आकर अपनी लीलाएं करते हैं, ताकि हम लोग सतत उनका श्रवण कर सकें। जब भगवान आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व यहाँ पृथ्वी पर आए थे, तब भी उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की, केवल इसलिए कि आगे आने वाले लोग, आगे आने वाले भक्त जो भगवान को पाना चाहते हैं, इन लीलाओं का श्रवण करें। श्रवण मंगलम, केवल सुनने मात्र से प्राणी का मंगल हो जाता है। ये प्रार्थनाएं गोपियां करती हैं, बताती हैं कि केवल कथा सुनने से, केवल कृष्ण के नाम को सुनने से, उनकी कथा सुनने से व्यक्ति का मंगल हो सकता है। इसलिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है, कृष्ण की कथा को सुनना। और कथाओं को कैसे सुनना चाहिए? कथाएं जब हम सुनते हैं तो उनमें गूढ़ रहस्य छुपा होता है। भगवान ने एक भी लीला अपनी ऐसी नहीं की है जिसमें कोई ज्ञान ना दिया हो। भगवान जब भी लीलाएं करते हैं तो ऐसी लीला करते हैं कि उससे देखने वाले को तो ये लीलाएं साधारण दिखती हैं या कोई असाधारण कार्य, लेकिन भक्तों के लिए उसमें ज्ञान छुपा होता है। इसलिए श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है, और वो भी प्रामाणिक तौर पे, प्रामाणिक गुरु से, प्रामाणिक परंपरा में, ताकि उस लीला के गूढ़ रहस्य को हम समझ सकें। जैसे हम लोग कई लीलाएं भगवान की सुनते हैं, लेकिन उन लीला का महत्व क्या है? जैसे हमने एक लीला सुनी कि भगवान ने पूतना का वध किया, भगवान ने पूतना का वध किया, पूतना आई थी उनको मारने के लिए और भगवान ने वध कर दिया, तो उसमें अगर हम लोग साधारण दृष्टि से देखें तो ठीक है, भगवान ने एक बहुत बड़ा कार्य किया, एक बहुत बड़ी राक्षसी को मारा, लेकिन भगवान ऐसे कार्य क्यों करते हैं? क्या कारण है वो राक्षसी को मारने का? भगवान और भी बहुत कुछ कर सकते थे, कुछ अपना चतुर्भुज रूप प्रकट करके बहुत सारा ज्ञान दे सकते थे, भगवान ने नहीं किया, उसी रूप में रहे और पूतना का वध किया। तो इससे भक्तों को क्या ज्ञान मिलता है? आचार्य समझाते हैं कि भक्तों को यह ज्ञान मिलता है कि किस तरह हमें अप्रमाणिक गुरु, जो बोगस गुरु हैं, उनसे बचना चाहिए, अर्थात जो भेष बदल कर हमारे सामने आते हैं एक गुरु के रूप में, उनसे हमें बचना चाहिए। ये भगवान दर्शाना चाहते थे। तो पूतना ये एक अप्रमाणिक गुरु या बोगस गुरु, ऐसे गुरुओं का प्रतिनिधित्व करती है। और अगर हम कृष्ण की शरण लेते हैं तो कृष्ण उस बोगस गुरु का जो जीवन है, बोगस गुरु का क्या जीवन होता है? लोगों को भटकाना, जिससे हम लोगों को भी, हम लोग भी भटकते हैं। तो अगर हम कृष्ण की शरण लेते हैं तो वो जो गलत राह हमें दिखाई है वो भगवान खींच लेते हैं, जैसे पूतना के स्तनपान करते समय उसका जीवन खींच लिया था। तो ये लीलाओं से हम लोग सीख सकते हैं। और साथ ही साथ लीलाओं में बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान होता है। जब कोई भक्त प्रार्थना करते हैं, हम लोग देखते हैं श्रीमद् भागवतम में इतनी सारी प्रार्थनाएं हैं, तो उनमें ज्ञान छुपा है। तो भगवान ऐसी लीलाएं, बहुत सारी लीलाएं भगवान ने की हैं, ये केवल हमें ज्ञान देने के लिए। ऐसी एक लीला भगवान ने की थी, जब भगवान द्वारका में रह रहे थे और उन्होंने एक राक्षस का वध किया था जिसका नाम था नरकासुर। भगवान को कई स्त्रियों ने, कई राजकन्याओं ने ये बताया था कि हमें बचाइए, क्योंकि नरकासुर नाम के ये असुर ने हमें बंद कर रखा है। नरकासुर दरअसल भगवान का ही पुत्र था, असुर था, लेकिन ये उसकी अलग कथा है कि किस तरह पृथ्वी माता के गर्भ से ये उत्पन्न हुआ था। तो पृथ्वी का पुत्र होने के कारण, भूमि का पुत्र होने के कारण इसे भौमासुर भी कहा जाता है। तो ये नरकासुर या भौमासुर बहुत बड़ा असुर था। इसने स्वर्ग में जाकर अदिति, जो कि देवताओं की माता हैं, उनके कुंडल चुरा लिए। सोने के कुंडल अदिति माता पहना करती थी, तो वो कुंडल चुरा लिए। और जो वरुण देव हैं उनका छाता चुरा लिया, केवल तंग करने के लिए देवताओं को, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। और देवताओं का एक स्थान था जहां पर वो क्रीड़ा किया करते थे, मंदार पर्वत की चोटी, उस चोटी को ही चुरा ले गया पूरा। इतना बड़ा असुर था, पूरे का पूरा उसका भाग चुरा कर ले गया कि आप यहां रमण करते हो, आप नहीं करो, हम करेंगे वहां पर जाकर धरती पर। वैसे ही असुरों का भाव होता है, वो दूसरों को कुछ कर अच्छा चीज करते देख नहीं सकते हैं, या आनंद लेते नहीं देख सकते। तो असुर देखते हैं देवता लोग आनंद ले रहे हैं, नंदन कानन वन है और अप्सराएं हैं, सोमरस है, तो हम क्यों यहां पर ऐसे बड़े बड़े अपने दांत निकाल कर हम बैठे रहे दैत्यों की तरह? वो भी कहते हैं हम भी जाएंगे, तो आक्रमण करते हैं देवताओं का। तो ऐसे ये चीजें चुरा लाया नरकासुर। तो इंद्र कुछ नहीं कर पाए, देवताओं के राजा हैं लेकिन ये असुर इतना शक्तिशाली था, भूमि पुत्र था, कि कुछ नहीं कर पाए। तो अंत में आए द्वारका में इंद्र और कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। वैसे इस लीला को आप ध्यान से श्रवण कीजिए, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है इंद्र के विषय में, जो हम बाद में बताएंगे। तो इंद्र आए प्रार्थना करने लगे भगवान से कि ये नरकासुर, इसने बहुत कष्ट दे रखा है देवताओं को, और ऐसे ऐसे इसने अदिति माता के कुंडल चुरा लिए हैं, वरुण का छतरी चुरा ली है, और बहुत सुंदर माला, जो फूलों की हम लोग पहना करते हैं, वो कई मालाएं चुरा कर ले गया है जो कि पृथ्वी पर नहीं आनी चाहिए, और साथ ही साथ मंदार पर्वत की चोटी भी चुरा कर ले गया है, तो कृपया आप इसका वध कीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान उस समय वध तो करना चाहते थे, साथ साथ थोड़ा आनंद भी और विहार भी करना चाहते थे, यानी घूमना चाहते थे। तो जब कोई व्यक्ति घूमना चाहता है तो क्या करता है? कोई गृहस्थ है, भगवान गृहस्थ थे उस समय, उनकी पत्नियां थीं। कोई जानता है कितनी पत्नियां थीं उनकी उस समय? हाँ जी, नहीं उस समय 8 पत्नियां थी केवल उनकी। हाँ, इस लीला के बाद 16,108 हो गई थी। तो 8 पत्नियां थी उनकी। और तो पत्नियां हैं, तो अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ, यहाँ पर जो गृहस्थ बैठे हैं वो जानते हैं कि जब घूमने जाते हैं तो सपत्नी जाना चाहिए, कोई भी धार्मिक कार्य करना है तो सपत्नी करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। यज्ञ में बिना पत्नी के नहीं बैठ सकते। इसलिए जब भगवान राम यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सोने की सीता बनवाई थी। बाद में उसमें भी तकलीफ हो गई थी भगवान राम को कि वो सोने की सीता कहने लगे अब हमें पत्नी के रूप में स्वीकार करो, बहुत सारी थी। तो फिर भगवान ने कहा एक है, एक पत्नी व्रत है, तो अब आप सब अगली बार जब मैं कृष्ण के रूप में आऊँगा तब गोपियों का रूप धर लीजिएगा। तो फिर वो गोपियों के रूप में आई थी। तो भगवान ने भी सोचा कि वैसे मैं नरकासुर की हत्या तो करने जा रहा हूँ, थोड़ा विहार भी कर लूँगा। तो उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा उनको साथ में लिया और गरुड़ पर सवार हुए और तुरंत गए जहाँ पर वो नरकासुर था, उसकी राजधानी थी। आचार्य समझाते हैं कि भगवान सत्यभामा को ही क्यों ले गए साथ में, 8 पत्नियाँ थीं, रुक्मिणी प्रमुख हैं, तो क्यों सत्यभामा को ले गए? तो इसके कई कारण आचार्य समझाते हैं। पहला कारण कि वो उनको विहार करवाना चाहते थे, घुमाना चाहते थे। भगवान की इच्छा है 8 में से किसी को भी ले जाएं, तो हम थोड़ी कह सकते कि आप पहले नंबर से लेकर जाइए। हाँ, जैसे हमारे यात्रा होती है तो ब्रह्मचारियों में होता है कि ये नंबर है, ये 10 गए हैं, अगली यात्रा में ये नहीं जाएंगे। तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि रुक्मिणी आपके साथ पिछली बार गई थी तब सत्यभामा जाएंगी। भगवान की इच्छा है, ले गए जिसे ले जाना है। दूसरा कारण, पृथ्वी का पुत्र था नरकासुर और भगवान ने ये वरदान दिया था पृथ्वी को कि मैं इसकी हत्या नहीं करूंगा, इस नरकासुर की। और अब भगवान उसी की हत्या करने जा रहे थे, तो जिसके लिए भगवान ने पृथ्वी को वरदान दिया है कि मैं इसकी हत्या नहीं करूंगा, तो भगवान कैसे हत्या कर सकते हैं? तो ये एक कारण था सत्यभामा को साथ में ले जाने का, क्योंकि पृथ्वी देवी सत्यभामा का विस्तार हैं, सत्यभामा से आती हैं। तो इसलिए कृष्ण जानते थे कि जब युद्ध होगा और नरकासुर भामासुर, जो दोनों नरकासुर या भामासुर, ये भगवान पर आक्रमण करेगा, और जब आक्रमण करेगा तो अपने पति पर आक्रमण होते देखकर सत्यभामा तो चुप नहीं बैठेंगी, वो तुरंत कहेंगी मारो इसको। तो जब कह देंगी, आज्ञा मिल जाएगी तो मार देंगे, मतलब अपना वचन पूरा रखेंगे। उन्होंने एक वचन दिया था हत्या नहीं करूंगा, लेकिन जब माँ खुद कह रही है मारो तो मारना चाहिए फिर। तो एक और कारण था कि सत्यभामा को साथ में ले गए थे। और तीसरा कारण था कि एक बार नारद मुनि ने उनको एक पारिजात का फूल लाकर दिया था भगवान कृष्ण को, और वो फूल भगवान ने रुक्मिणी देवी को दे दिया था। तो सत्यभामा थोड़ी क्रोधित हो गई थी, ये आध्यात्मिक क्रोध है, ये भौतिक क्रोध नहीं है। तो क्रोधित हो गई थी, तो वो चाहती थी, तो भगवान ने उनको भी वचन दिया था कि आप चिंता मत करो, आपके लिए पूरा पेड़ ले आऊँगा मैं। ऐसा कभी कभी होता है घर परिवार में, कब दो बच्चे हों या दो पत्नियाँ, 3-4 पत्नियाँ हों, वैसे भगवान ना करे हो, लेकिन अगर किसी की हो तो उसको ऐसा ही करना पड़ेगा। एक पत्नी को नेकलेस ला के दिया तो दूसरी पत्नी कहेगी क्यों, मैंने कुछ पाप किया है क्या, मेरे लिए क्यों नहीं है? तो फिर वो कहेगा ठीक है ठीक है, इसको एक नेकलेस ला के दिया है, तुमको मैं बहुत बड़ा पाँव तक आने वाला हार ला के दे दूंगा, जैसे भगवान वनमाली माला पहनते हैं। ऐसे हो सकता है। तो भगवान ने भी ऐसे ही कहा कि ठीक है ठीक है, तो उसको एक फूल दिया है, उनको पूरा पेड़ ला के दे दूंगा, चिंता क्यों करती है? तो भगवान ने सोचा कि अब मैं विहार के लिए जा रहा हूँ, बार बार तो जाऊँगा नहीं, तो ऐसे करते हैं वहाँ से ऑन द वे। हम लोग कहते हैं ना कि जैसे समझिए कोई व्यक्ति कहता है आप कहाँ जा रहे हो, आप सीबीटी तक जा रहे हो, तो रास्ते में जरा बोगरवेस पड़ता है तो वहाँ से एक काम करते हुए जाओ। तो भगवान ने सोचा हम जाएंगे इंद्रलोक में, रास्ते में नरकासुर के जरा हत्या करते हुए चले जाएंगे, कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो इसलिए भी सत्यभामा को साथ में लिया। तो इस तरह सत्यभामा को लेकर भगवान गए और वहाँ पर उन्होंने जब पहुँचे तो वहाँ पर बाहर जो मैदान था उसमें उन्होंने देखा, एक्चुअली जो उसकी पूरी नगरी थी वो बहुत तरीके से कवर्ड, मतलब सुरक्षित थी। उसमें बहुत सारे सुरक्षा के प्रयास किए गए थे उस नगरी को सुरक्षित करने के लिए, बहुत सारे कार्य किए थे उसने राक्षस ने। जैसे उसने अपने माया जाल से एक बंधन बनाया हुआ था, तो उस बंधन को कोई काट नहीं सकता था। तो ऐसे और भी कई बंधन थे। तो इस तरह से भगवान ने जब देखा कि चारों तरफ से सुरक्षित है नगरी, तो पहले उसके सारे बंधन उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से जो बंधन उसने बनाए थे वो काट दिए। तो उस समय जो बाहर का मैदान था उसमें एक राक्षस सो रहा था। जब उसने देखा ये बंधन सब कट रहे हैं तो एकदम हैरान हो गया। फिर उसने देखा कि कोई एक व्यक्ति है गरुड़ पर बैठा हुआ है और वो ये बंधन काट रहा है, तो तुरंत उसने आक्रमण किया भगवान पे। ये भी बहुत बड़ा असुर था और इसका नाम था मूर राक्षस, इसीलिए भगवान को मुरारी कहते हैं, जिस राक्षस को भगवान ने मारा। तो ये राक्षस ने भगवान पर आक्रमण किया, भगवान ने बहुत आराम से उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसके 7 पुत्र, उन्होंने देखा कि भगवान ने हमारे पिता की हत्या की है, तो उन्होंने भी आक्रमण किया, पूरी सेना लेकर आक्रमण किया। भगवान ने उस सारी सेना और 7ों पुत्रों को खत्म कर दिया। उसके बाद जब भौमासुर ने अंदर ये सुना, नरकासुर ने, कि ऐसे ऐसे मेरे एक बहुत बड़ा मेरा जो मित्र राक्षस मूर, वो उसकी मृत्यु हो गई और साथ ही साथ उसके 7 पुत्रों को भी मार दिया, तो बहुत क्रोध में आ गया और कई हाथियों को लेकर बाहर निकला। और एक एक हाथी का बताया जाता है कि वो ऐरावत के समान हाथी थे, बहुत भयानक और भयंकर, बहुत शक्तिशाली। तो ऐसे कई हाथियों को लेकर बाहर निकला, पूरी सेना लेकर बाहर निकला। ऐसा वर्णन किया गया है कि उसकी 11 अक्षौहिणी सेना थी और भगवान अकेले थे। इससे हम लोग सीख सकते हैं कि हम लोग कभी कभी कहते हैं कि महाभारत का जब युद्ध हुआ तो उसमें भी 11 अक्षौहिणी सेना सामने थी भगवान के। तो इस लीला में भगवान ने अकेले ही 11 अक्षौहिणी सेना को मार दिया। तो क्या वो वाली 11 अक्षौहिणी सेना को मारने के लिए उन्हें अर्जुन की आवश्यकता थी? क्या उन्हें इतनी सारी 7 अक्षौहिणी सेना की आवश्यकता थी? वो वैसे भी मार सकते थे। केवल भक्तों के गुणगान के लिए उन्होंने अर्जुन को ये श्रेय दिया। तो यहां पर भी ये राक्षस 11 अक्षौहिणी सेना लेकर आया, कई हजार सैनिक, कई हजार हाथी घोड़े, बहुत सारे लाखों सैनिक, कोई भाला लिए हुए, कोई घोड़ों पर चढ़े हुए, और लेकर आया मारने के लिए। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। तो पहले तो उसके सारे सैनिकों को भगवान ने मारा, ऐसे तीर चलाए कि कुछ ही तीरों में सारे सैनिक एक साथ, उनके हाथ पांव सर अलग अलग सब कट गए। उसके बाद ये जो राक्षस था और जिस हाथी पर बैठा था, उस हाथी ने गरुड़ पर आक्रमण किया बहुत तेजी से। गरुड़ को ऐसे लग रहा था कि कोई उनको आकर हार पहना रहा है, गले में हार डाल रहा है। तो गरुड़ बहुत प्रसन्न हो रहे थे, हमारे भी गले में कोई जाकर हार डालता है तो सब प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत अच्छा है। तो गरुड़ प्रसन्न हो गए और वो युद्ध करने लगा तेज राक्षस। तो ऐसे कुछ समय तक युद्ध हुआ। उसने भगवान पर कई अस्त्र शस्त्र फेंके, भगवान ने उन अस्त्रों को काट दिया। और फिर अंत में जब उसने देखा कि उसकी कोई नहीं अस्त्र कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो वो स्वयं भगवान के ऊपर भागा आक्रमण करने के लिए, पूरी शक्ति से भागा। और उस समय सत्यभामा देख नहीं पाई। सत्यभामा ने कहा, मारो मारो इसे, मार दो। भगवान ने कहा, थैंक यू। हत्या कर दी उसकी, सुदर्शन चक्र चलाया, क्योंकि भगवान इंतजार कर रहे थे, वो तो पहले ही मार सकते थे, लेकिन वो चाहते थे पृथ्वी देवी आज्ञा दें तब मारू, नहीं तो कल को कहेंगे आपने वरदान दिया था और मार दिया। तो अब भगवान कह सकते हैं, आपने कहा था इसलिए मारा, नहीं तो मेरी इच्छा नहीं थी। तो फिर भगवान ने उस नरकासुर का वध किया और उस समय पृथ्वी देवी स्वयं वहां पर प्रकट हुई। पृथ्वी देवी घबराई हुई थी, क्योंकि घबरा जाएंगे, आपके किसी घर वाले है, कोई पुत्र है, कोई पिता है, और सडनली किसी ने आके उसकी हत्या कर दी है और वो हत्यारा सामने खड़ा है, तो आप घबरा जाओगे ना। पृथ्वी देवी नरकासुर के पुत्र के साथ वहां पर आई, थोड़ा सा घबराई थी, लेकिन नरकासुर का जो पुत्र था वो तो कांप रहा था भगवान को देखकर। असुर था वो भी, बहुत बड़ा असुर था, बाद में भगवान ने उसको राजा बनाया वहां का, उस राज्य का, लेकिन उस समय कांप रहा था भगवान को देखकर। भगवान कोई बहुत भयानक नहीं लग रहे थे, नरसिंह देव की तरह प्रकट नहीं हो रहे थे उस समय, कि जैसे नरसिंह देव को देखकर बड़े बड़े भक्त भी घबरा गए थे, कोई सामने नहीं जा रहा था। शिव जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, लक्ष्मी देवी ने कहा, भाई मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरे पति ऐसे हैं, ये मेरे पति नहीं हैं। लेकिन उस समय ऐसे नहीं दिख रहे थे, उस समय भी उनका वही रूप था, मगर क्योंकि हृदय में भय था, वे सोच रहा था कि अब मेरी हत्या होने वाली है, इसलिए कांपने लगा थर थर। और उस समय पृथ्वी देवी लेकर गई उसको। पृथ्वी देवी ने सबसे पहले जो चीजें उसने चुराई थी नरकासुर ने, उनको वापस किया, जैसे आदिति के कुंडल, वरुण का छाता और मंदार पर्वत की चोटी और फूल मालाएं, वो सब वापस की भगवान को। और फिर भगवान से वो प्रार्थनाएं करने लगी, और बहुत सुंदर प्रार्थनाएं पृथ्वी देवी ने अर्पण की। वो कहने लगी, नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्त छोपत रूपाया परमात्मा नमस्तुते। वो कहने लगी कि हे परमात्मा, हे भगवान, आप सभी के जीवों, सभी के हृदयों में परमात्मा के रूप में हैं। शंख चक्र और गदा, गदा आप धारण करते हैं, और ऐसे भक्तोच्छोपत रूपाया, केवल भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे कि भगवान अलग अलग रूप धारण क्यों करते हैं, भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। नरसिंह देव का रूप क्यों लिया, भक्तों की इच्छा को पूर्ण, राम बने भक्तों की इच्छा को पूर्ण। देवताओं ने प्रार्थना की थी भगवान से कि आप दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लीजिए, एक मानव रूप में जन्म लीजिए, तब भगवान आए थे। तो भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अलग अलग रूप भगवान लेते हैं, ये यहां पर पृथ्वी देवी बताने लगी। फिर वो आगे कहने लगी, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिने। इस श्लोक आप लोगों ने कहीं सुना है पहले, कुंती महारानी, इस श्लोक दो बार आता है भागवतम में। एक कुंती महारानी ने पहले स्कंद में और दसवें स्कंद में पृथ्वी देवी यही प्रार्थना करती हैं। तो हम लोग कह सकते कॉपी कर रही है ना, पहले कुंती देवी ने किया, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए ये लीला कुंती देवी की लीला के पहले हुई है, अभी तक वो लीला हुई नहीं है। हालांकि भागवतम में कुंती देवी पहले प्रार्थनाएं करती हैं, लेकिन ये लीला बाद, ये जो भौमासुर के वध की लीला है ये पहले हुई थी, इसलिए कहना चाहिए कि पृथ्वी देवी ने पहले ये प्रार्थनाएं की। और साथ ही साथ इससे हम ये भी देख सकते हैं कि भगवान सबके हृदय में रहते हैं परमात्मा के रूप में, इसलिए सभी के हृदय में एक भाव आता है भक्तों के हृदय में। तो इस तरह की प्रार्थनाएं पृथ्वी देवी करने लगी कि आपके कमल आपका अंग कोमल है, पुष्प के समान है, आपके पूरा शरीर बहुत कोमल है। और फिर वो कहने लगी, इन दोनों में हम एक समानता देखते हैं, कुंती महारानी ने भी ऐसी ही प्रार्थना की और पृथ्वी देवी ने भी ऐसी प्रार्थना की, ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों स्थानों पर एक स्त्री प्रार्थना कर रही हैं और वो एक अलग रूप देखती हैं भगवान का। जैसे कुंती महारानी थी, वो देख रही थी कि किस तरह से भगवान को एक बालक के रूप में भी देख सकती थी क्योंकि उनकी बुआ थी, लेकिन उस समय वो रूप नहीं देख रही थी, वो अपने आप को निम्न मान रही थी। तो इसी तरह पृथ्वी देवी भी अपने आप को बहुत निम्न मान कर ये प्रार्थनाएं भगवान को अर्पण करने लगी। और वो कहने लगी कि आप सारे इस सृष्टि के आत्मा हैं। कुंती महारानी ने भी एक श्लोक में ऐसी प्रार्थना की है, सर्वात्म, तो ऐसी ये प्रार्थनाएं करने लगी। तो भगवान को क्यों सारी सृष्टि का आत्मा कहा जाता है? आत्मा शब्द से हम लोग क्या समझते हैं, आत्मा का अर्थ क्या है? हाँ जी, आत्मा, चेतना, शरीर में चेतना है तभी तो कहते हैं ना कि आत्मा है। आत्मा चली जाती है तो चेतना नहीं रहती, चेतना नहीं है तो आत्मा नहीं। चेतना आत्मा का लक्षण है। तो इस सारी सृष्टि के आत्मा भगवान क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि अगर भगवान नहीं हो तो इसमें चेतना नहीं होगी, कोई भी चीज जागृत नहीं होगी, चर नहीं होगी, सब मृत होगा। ये भौतिक जगत, वैसे भी सृष्टि की शुरुआत में ये भौतिक जगत इसी अवस्था में रहता है। जब भगवान का दृष्टिपात होता है, अर्थात भगवान अपने आप को आत्मा के रूप में स्थापित करते हैं, तब इस सृष्टि में चेतना आती है, जागरूकता आती है, अर्थात ये सुप्त अवस्था में ही रहती है। तो यहां पर वो प्रार्थना करने लगी कि आप सारी जीवात्मा, सारी सृष्टि के आत्मा हैं, और साथ ही साथ आप तीनों गुणों को छूते हैं लेकिन फिर भी उनसे अछूते रहते हैं। अर्थात इस सृष्टि का रचना करने के लिए आप रजोगुण को छूते हैं, आप उसका नाश करने के लिए तमोगुण को छूते हैं, आप उसको पालन करने के लिए सत्वगुण को छूते हैं, लेकिन फिर भी आप इन तीन गुणों से परे हैं। अर्थात आप अपना विस्तार करते हैं, जैसे भगवान विस्तार करते हैं शिव जी के रूप में, जो तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, जो इस का विध्वंस करते हैं, ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं, रचना करते हैं, तो रजोगुण के हैं अधिष्ठाता। तो इस तरह वो अलग अलग प्रार्थनाएं अर्पण करने लगी, और उसके बाद उन्होंने भामासुर के पुत्र को सामने किया और कहा कि ये नरकासुर का पुत्र है, आप कृपया इस पर कृपा कीजिए, मतलब इसको नहीं मारिए। पृथ्वी देवी कह रही थी आपने मेरे पुत्र को तो मारा ठीक है, लेकिन मेरे पोते को मत मारिए। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं इसकी हत्या नहीं करूँगा। भगवान ने उसको कहा कि आप इस पर राज्य करो, उसको राजा बनाया, और फिर भगवान उसमें, और जैसे ही उन्होंने भगवान को देखा तुरंत आकर्षित हो गई। सबके मन में एक ही इच्छा आई कि ये जो व्यक्ति आए हैं हमें इनका सानिध्य प्राप्त हो और ये हमें पत्नी के रूप में स्वीकार करें, ऐसी इच्छा वो करने लगी। तो कृष्ण सबके हृदय में हैं परमात्मा के रूप में, और परमात्मा से वो इच्छा कर रही थी। हम लोग इच्छाएं किससे करते हैं? अगर हम लोग हृदय में इच्छा करते हैं तो कौन सुनता है? परमात्मा सुनते हैं, और तो कोई नहीं सुनता। बाहर हम लोग इच्छाएं करते हैं तो सब लोग सुनते हैं, हृदय में जो बहुत सारी इच्छाएं वो कौन सुन रहा है? परमात्मा। तो कृष्ण ने सुना, ठीक है, लेकिन उस समय उन्होंने पहले प्रार्थनाएं की बाद में भगवान से कि हे भगवान, आपको हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? भगवान कह सकते तेरे भाई पहले ही आठ नहीं संभल रही है मेरे से, 16,100 और कहां संभालूंगा, लेकिन ये अंतर है भगवान। उन्होंने कहा कि ये धर्म है कि एक स्त्री को या तो पिता के आश्रय में रहना चाहिए या पति के आश्रय में। तो पिता का आश्रय हम छोड़ चुकी हैं, हमें वहां से भले ही हरण किया गया है लेकिन पिता का आश्रय हम छोड़ चुकी हैं, इसलिए हमें यहां पर आपका आश्रय चाहिए। हम आपको पति के रूप में स्वीकार करती हैं, आप हमें आश्रय दीजिए। तो उस समय भगवान ने यह प्रार्थना उनकी स्वीकार की। और एक कारण भी था जो उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि ये राक्षस हमें लेकर आ गया है, समाज की दृष्टि से हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसी स्त्री का हरण करके कोई दूसरी जगह पर एक राक्षस ले गया, हालांकि उसने केवल ले जाकर उन्हें रखा था उस स्थान में, लेकिन फिर भी बाहरी दृष्टि से, समाज की दृष्टि से उन लोगों से कौन विवाह करेगा। तो वो कहने लगे कि अब समाज की दृष्टि से हम अविवाहित रह जाएंगे, कोई विवाह नहीं करेगा, इसलिए आप हमसे विवाह कीजिए। तो ये हमें जानना चाहिए कि भगवान ने कोई इंद्रिय तृप्ति करने के लिए 16,100 रानियों से विवाह नहीं किया था, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उनको समाज में एक स्थान देने के लिए। क्योंकि क्या स्थान मिलता उनको? कोई जाकर कहते कि राक्षस के आप एक साल दो साल रहे हैं तो कौन उनको सम्मान देता? क्या स्थान मिलता उनको समाज में? तो उनको वो स्थान देने के लिए और उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान ने उनसे विवाह किया। वहां पर विवाह नहीं हुआ, भगवान ने कहा ठीक है आप लोग सब जाइए। भगवान ने सबके लिए एक एक पालकी और बहुत सारे घोड़े, हाथी, बहुत सारा सामान, बहुत ऐश्वर्य के साथ उन्हें वापस द्वारका भेजा। विवाह भगवान ने द्वारका में आकर किया। विवाह भी बहुत अद्भुत विवाह था। भगवान के सारे कार्य दिव्य हैं, जन्म कर्म चवे दिव्यम। जब 16,100 रानियों से विवाह कर रहे थे तो एक ही समय पर विवाह हुआ, एक ही मुहूर्त में 16,100 मंडप। हम लोग सोच सकते हैं, यहाँ कभी कभी हम लोग देखते हैं सामूहिक विवाह होते हैं, यहाँ होते हैं कि नहीं हमें पता नहीं, ज़्यादातर हमने देखा शहरों में, बड़े शहरों में
कोई संस्थाएं होती हैं जैसे जैन समाज, अग्रवाल समाज, ये समाज वो समाज, तो वो लोग सामूहिक विवाह कराते हैं, अर्थात 15-20 जोड़े एक साथ बैठते हैं, एक बार में ही यज्ञ हो जाता है। उनकी इच्छा खर्चा बचाने की होती है शायद लेकिन भगवान ने इतना बड़ा विवाह किया, सामूहिक विवाह 16,100। इस सामूहिक विवाह में क्या होता है, दूल्हे अलग अलग होते हैं, दुल्हन अलग अलग होती हैं, अलग अलग दोनों, लेकिन भगवान के विवाह में क्या था, 16,100 कन्याएं थी अलग अलग, लेकिन 16,100 जो पति थे वो एक ही थे, भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने अपना विस्तार किया 16,100 रूपों में, भगवान कर सकते हैं। तो एक ही समय पर विवाह हुआ। अब यह भी प्रश्न आता है, देवकी माता तो एक ही थी, उनके रिश्तेदार तो एक एक ही थे, भले भगवान ने अपने आप को विस्तार किया 16,100 में, तो ये लोग कौन से वाले भगवान के विवाह में गए, या ऐसा कर रहे थे इधर से उधर भाग रहे थे, क्या कर रहे थे क्या किया होगा उन्होंने, आप सोचिए देवकी माता की क्या हालत हुई होगी, सोच रही होंगी अरे वो भी मेरा पुत्र है, वो भी मेरा पुत्र है, वो भी मेरा पुत्र है, कहां कहां गई होंगी, कुछ आप लोग सोच सकते हैं कहां कहां गई होंगी देवकी माता, वसुदेव और जो द्वारका में रहने वाले थे सारे उनके रिश्ते, क्योंकि शादी हो रही है, भगवान का विवाह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बालाजी ने अपने विवाह के लिए करोड़ों रुपया, करोड़ों वो अभी तक उधार लिया, वो अभी तक वापस नहीं किया, वो तो एक ही विवाह किया था उन्होंने, तो 16,100 विवाह हो रहे हैं, यानी कितने ऐश्वर्य से हो रहे होंगे, कितना धन खर्चा हुआ होगा और कितने सारे लोग आए होंगे, तो ये रिश्तेदार कहाँ कहाँ गए होंगे, या भगवान ने ऐसा एक प्लेन दिया होगा घूमते रहो इधर से उधर 16,000, ऐसा है। आचार्य समझाते हैं ये भगवान की शक्ति है कि उस समय न केवल भगवान बल्कि सारे रिश्तेदार सभी 16,100 रूपों में विस्तरित हो गए थे, अर्थात हरेक शादी में उस समय पर हर रिश्तेदार मौजूद था भगवान का हर स्थान पे। ये भगवान की शक्ति है, भगवान ने अकेले विस्तार नहीं किया, कर सकते, भगवान ने दिखाया ब्रह्म विमोहन लीला में वृंदावन में, सारे ग्वाल बालों के रूप में, सारे गायों गायों के बछड़ों के रूप में हो गए थे, तो फिर इन रूपों में क्यों नहीं वो अपने इन लोगों को भी विस्तार करवा सकते हैं। तो ऐसा भगवान ने ये विस्तार करवाया और ऐसा अद्भुत विवाह हुआ भगवान का 16,100 रानियों से एक ही समय पर। तो जब नरकासुर का वध कर दिया भगवान ने, तो उस समय भगवान फिर सत्यभामा के साथ चले गए इंद्र के लोक में, स्वर्ग में, और वहां पर जाकर आदिति उनको उन्होंने उनके कुंडल वापस किए और उनको छाता दिया। उस समय इंद्र और शची देवी ने भगवान की आराधना की, भगवान की पूजा की। इतना सब हुआ अभी तक, पहले इंद्र आए प्रार्थना करे, गिड़गिड़ाए भगवान से, कुछ करो मुझे बचाओ, कल को मेरा सब कुछ ले जाएगा, क्या करूँगा। भगवान ने जाकर बचाया, फिर जाकर भगवान की पूजा भी की इंद्र ने। इतना सब होने पर भी जब भगवान बाहर निकल रहे थे, जा रहे थे, तो जाते जाते भगवान ने उनके बाग से एक पेड़ उखाड़ लिया, कौन सा, पारिजात वृक्ष, सत्यभामा को तो इसीलिए ले गए थे ना, तो एक पेड़ ऐसे उखाड़ लिया और गरुड़ की पीठ पे रख दिया, चलो अब जाएंगे। लेकिन देखिए ये भक्त हैं, ये भक्तों के लिए विशेष है, भक्त थे इंद्र, भगवान की प्रार्थना की, भगवान की आराधना की, पूजा की कुछ ही देर पहले, लेकिन जैसे ही देखा कि भगवान वृक्ष ले जा रहे हैं, तुरंत युद्ध करना शुरू कर दिया। भगवान से कहा नहीं आप नहीं ले जा सकते, ये स्वर्ग लोक का वृक्ष है, पृथ्वी पे कैसे जाएगा। ये देखिए भक्तों में ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, हम लोगों में भी ऐसा होता है कि हम लोग भक्ति करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, सब है, लेकिन अगर कल को हो जाए कि भगवान हमारे घर का थोड़ा सा कुछ ले जा रहे हैं, तो करे मेरे घर का क्यों ले जा रहे हो, इतना सारा आपकी सारी भूमि आपकी है, फिर मेरे ही घर का क्यों ले जा रहे हो आप। या भगवान कभी कभी हमारे घर के किसी सदस्य को ले जाते हैं, तब भी हमारे हृदय में दुख हो जाता है, क्यों मेरे ही घर का सदस्य क्यों ले गया, इतने सारे असुर हैं, इतने सारे अभक्त लोग हैं, उनको क्यों नहीं ले गए। तो ऐसे भाव नहीं होना चाहिए। तो तुरंत उस समय युद्ध करने लगे इंद्र, और युद्ध हुआ, भगवान से तो जीत नहीं सकते हैं, भगवान की तो जो इच्छा होती है वो करते ही हैं। तो इस तरह से भगवान लीलाएं करते हैं। तो इन लीलाओं से इन पूरे नरकासुर का जो वध किया या पारिजात वृक्ष चुराया, चुराया नहीं कहना चाहिए भगवान के लिए, वैसे कहीं कहीं जगह ऐसा शब्द यूज़ किया, लेकिन चुराया कहाँ, भगवान तो इच्छा है ले लिया, सब कुछ उनका ही है, कोई मालिक अपनी संपत्ति थोड़ी चुराता है। जैसे कोई व्यक्ति यह धन कमाता है बाहर जाकर, और वो धन उसकी जेब में है, और कहीं उसकी इच्छा हुई बाहर चलते चलते कि चलो कुछ खा लिया जाए, तो अपनी जेब से पैसा निकालता है और देकर अगर कुछ खा लेता है तो चोरी नहीं है, चोरी थोड़ी है, चोरी तो उसके घर वाले करते हैं पत्नी और बच्चे जब बिना पूछे निकाल लेते हैं जेब से। ये वर्णन भी भागवतम में है, हम ऐसे नहीं कह रहे। तो लेकिन इसी तरह जो सब संपत्ति भगवान की है, अगर उन्होंने एक वृक्ष ले लिया तो कौन सी बड़ी बात हो, तो उनकी संपत्ति है। ये इंद्र को समझना चाहिए था कि ये संपत्ति भगवान की है, सब कुछ भगवान का है, मैं कैसे रोक सकता हूं उनको, लेकिन इतनी बुद्धि नहीं थी। तो इसलिए हम लोगों को इससे सीखना चाहिए कि भले ही हम लोग भक्ति मार्ग में हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान के सामने खड़े होकर आरती करते हैं, भगवान के लिए हार बनाते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, मंदिर साफ करते हैं, सब ठीक है, लेकिन अंत में भाव ये नहीं होना चाहिए कि मेरा भी तो कुछ पर्सनल ये मेरा है, बाकी भगवान का है। ठीक है, मंदिर भगवान का है, ये जगह भगवान की है, वो जगह, अभी किसी गृहस्थ को जाके कहें कि आप घर में रह रहे हो, ऐसा करो बाहर जाओ, ये घर भगवान के लिए दे दो, तो कहेगा अरे मेरा घर, मैं कहाँ जाऊँगा, आपके पास इतना बड़ा मंदिर है, आप मंदिर में रहिए। तो ये भाव नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप घर छोड़ के सब लोग बाहर सारा कुछ मंदिर को दे दीजिए, भगवान ने हमें दिया है रहने के लिए, इसको सोचिए कि भगवान ने दिया है, भगवान की संपत्ति है, अगर कल को भगवान में चाहेंगे तो मैं एक क्षण भी उसके लिए हिचकिचाऊंगा नहीं, तुरंत भगवान को अर्पण कर दूंगा। ये भाव भक्तों का होना चाहिए, इंद्र की तरह नहीं। एक वृक्ष क्या चीज है, भगवान के लिए क्या है, भगवान चाहें तो लाखों करोड़ों ऐसे वृक्ष वैसे ही द्वारका में उत्पन्न कर सकते थे, लेकिन केवल ये ज्ञान देने के लिए कि किस तरह हमें जानना चाहिए कि सब कुछ भगवान का है, हमें ये लीला भगवान करके दिखाते हैं। नहीं तो भगवान ने, जब इंद्र ने अप्सराएं भेजी थी भगवान के पास, जब तपस्या कर रहे थे नर नारायण ऋषि के रूप में, तो अप्सराएं भेजी थी बहुत सुंदर सुंदर, ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट। तो भगवान ने कहा ये क्या गिफ्ट दिखा रहे हो मुझे, भगवान ने और सुंदर सुंदर अप्सराओं की उत्पत्ति की, एक बहुत सुंदर अप्सरा, और उसे कहा ये लो मेरी तरफ से इंद्र को गिफ्ट दे देना। तो भगवान वैसे ही कर सकते थे इतने सारे पेड़, केवल हम लोगों को ये समझाने के लिए कि हम ये जाने सब कुछ भगवान का है। और ये कब जान सकता है व्यक्ति कि सब कुछ भगवान का है, जब वो ज्यादा से ज्यादा भगवान के विषय में श्रवण करे, ज्यादा से ज्यादा भक्तों की संगति करे, जैसा यहां इस श्लोक में बता रहे हैं यत संग लब्धम, संग करे भक्तों का तब ये जान सकता है, क्योंकि जैसा संग होता है वैसा ही हमारी चेतना बनती है। आप शराबियों का संग कीजिए, आपकी इच्छा नहीं है शराब पीने की, थोड़े दिन बाद आप सोचने लगेंगे थोड़ा सा पीने में क्या गलती है, कोई बुरी बात नहीं है, पाप थोड़ी कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, नॉनवेज खाना पाप है, हत्या करनी पड़ती है, शराब पीने में कौन सा बड़ा पाप है, इतने सारे लोग पी रहे हैं तो हम भी पी लेते थोड़ा सा, ये शराबियों के संग का असर है। पापियों का कीजिए, आप सोचेंगे कोई ऐसी गलत बात नहीं है, ऐसे कई लोग हैं। आज आप अगर जम्मू कश्मीर में जाइए तो वहां पर आतंकवादी जो परिवार हैं, जो आतंकवादियों को बहुत समर्थन देते हैं, या जिनके घर से कोई ना कोई आतंकवादी है, उनसे आप बात कीजिए तो बताते हैं हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ये जिहाद है, धर्म का युद्ध कर रहे हैं हम लोग, धर्म के लिए लड़ रहे हैं, भारत ने क्या दिया है हमें, कुछ नहीं दिया है, इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं, और हम लोग ये लड़ के भले हमारा जीवन समाप्त कर दें लेकिन हम लोग ये युद्ध करेंगे। उनको लगता है कि अगर उन्होंने ये युद्ध लड़ लिया, या अपने जीवन में 12-15 हिंदुस्तानियों को या 50-60 हिंदुस्तानियों को मार दिया, तो समसिद्धि हरितोषणम, फिर वो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे उनसे। ये मूर्खता है, क्योंकि वो जानते नहीं कि सब कुछ भगवान का है। जो कुछ होता है हमारे साथ वो भगवान की इच्छा से होता है, और ये हम समझते हैं भक्तों के संग में। वे लोग ऐसे लोगों का संग कर रहे हैं जो उन्हें ये समझाते हैं कि आपका यही कार्य है, यही आपका जीवन है, यही आपका धर्म है। लोगों की हत्या कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं। इसीलिए भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है, जहां केवल बताया जाता है कि भक्ति ही करना चाहिए, और वो भी किसकी? कृष्ण की। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल भाव से कृष्ण की भक्ति, ये केवल भक्तों के संग में हम लोग जान सकते हैं। इसलिए यहां पर इस श्लोक में बता रहे हैं यत संग लब्धम, और भगवान के कार्यों को सुनना, भगवान की लीलाओं को सुनना, ये भी भक्ति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जैसे आज हम लोगों ने एक छोटी सी लीला भगवान की सुनी, लेकिन न केवल सुनना, उससे ज्ञान प्राप्त करना, जो ज्ञान भगवान उस लीला में देना चाहते हैं उससे ज्ञान प्राप्त करना कि किस तरह अगर हम भगवान के विरुद्ध जाएंगे या पापपूर्ण कार्य करेंगे तो एक दिन भगवान ने जिस तरह असुरों का वध किया, हमें भी बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे। इसलिए हमारे हृदय में जो असुर हैं, भले वो नरकासुर, भौमासुर, प्रलंबासुर, कोई भी असुर हो, प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि कृपया हमारे हृदय से इन असुरों को भी मारिए, जैसे आपने और असुरों का वध किया है। और इस तरह करते रहने से, यहाँ श्लोक में बता रहे हैं कि ये जो ध्वनि हमारे कानों से जाती है, जैसे आज हमने श्रवण किया, तो ये हमारे हृदय के मल को दूर कर देती है, अर्थात असुरों को मार देती है। उस समय भगवान को स्वयं मारना पड़ा था सुदर्शन चक्र लेकर। असुरों को कौन मार सकता है? केवल भगवान ही मारते हैं। देवी देवता मार सकते होते तो मार देते, भगवान के पास क्यों जाते भीख मांगने के लिए या प्रार्थना करने के लिए? देवी देवता नहीं मार सकते। इसीलिए भक्ति मार्ग में यह बताया जाता है कि कृष्ण की भक्ति कीजिए, देवी देवताओं की भक्ति से आपके असुर मरने वाले नहीं है। वे लोग देवी देवताओं को मार सकते हैं, बहुत बड़े बड़े असुर हैं हृदय में। इसीलिए भगवान का नाम जो कि कृष्ण से अभिन्न है, उसको अपने कानों के द्वारा अपने हृदय में ले जाना चाहिए, और हृदय में जाते ही जब भगवान को असुर देखेंगे तो उनके ऊपर आक्रमण करेंगे, जैसे नरकासुर ने किया। और जैसे ही आक्रमण करेंगे तो कृष्ण क्या करेंगे? वध कर देंगे। तो हमारा काम हो जाएगा, हमें कुछ भगवान को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि असुर को मारो, उस असुर को मारो। हमें केवल भगवान को अपने हृदय में ले जाना है, अपने आप सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर यही श्लोक में बता रहे हैं कि ध्वनि तरंगों के रूप में हृदय में प्रवेश कराना है। और एक महत्वपूर्ण बात और कह रहे हैं कि गंगा स्नान करने से भले ही हम लोग मल से मुक्त हो जाते हैं, बताया जाता है पापों से मुक्त होते हैं, लेकिन ये दीर्घ काल तक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम गंगा स्नान करते हैं, बाहर आकर फिर पाप करते हैं, या गंगा स्नान पूर्ण श्रद्धा से नहीं करते तो उसका लाभ नहीं होता। इसलिए भक्तों का संग केवल दर्शन, दर्शने पवित्र करो ए तुम्हार गुण, ये भक्तों का गुण है। तो इसलिए हमें भक्तों के संग, भक्तों का दर्शन, भक्तों के द्वारा दिया गया ज्ञान, उसको ग्रहण करना चाहिए, जिसके द्वारा हमारे हृदय में जो असुर बैठे हैं वो दूर हो जाएं और हम लोग भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले सकें। ये अनर्थ ही हैं, ये असुर हैं जो हमें दूर रखते हैं भगवान के चरण कमलों से। इसलिए इनको पहले मारना चाहिए, भगवान को हृदय में लाना चाहिए। और यही श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सार है, कृष्ण के नामों का श्रवण, कृष्ण के गुण का श्रवण, कृष्ण के लीला वैशिष्ट्य इनका श्रवण और कीर्तन, यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
वंदेहं श्री गुरु श्री युता पदकमलं श्री गुरुं वै श्रीरूपं चाक्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सदीवम् शाक्तैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदा साधन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधार शिवासदि गौरभक्तवृन्दम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधार शिवासदि गौरभक्तवृन्दम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधार श्रीवासदि गौरभक्तवृन्दम् Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama.
हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
Ram Ram Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Krishna, 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 Krishna.